इशिका रियूनियन पार्टी के लिए आई हुई थी। साथ ही वे वहां प्रोफेसर मिलर का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां उसे अपना एक क्लासमेट चरित सक्सेना मिला, जो उसी की कंपनी में काम करता था। अनजाने में चरित के सामने इशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई आ चुकी थी। इशिका की सच से अनजान उन सबको यही लगता था कि इशिका को अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली है। उनकी एक क्लासमेट एलिस, जो चरित को पसंद करती थी, वो जानबूझकर मैटर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही थी, क्योंकि चरित इशिका का फेवर कर रहा था। इस बीच नक्श और आयशा भी वहां पहुंच गए। आयशा ने उन सबसे झूठ बोला था कि वो डॉक्टर मर्चेंट के गाइडेंस में वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। जैसे ही ये बात फिर से उछली तो अचानक चरित के मुंह से निकल गया, इशिका ने कब आयशा को गाइडेंस देने के लिए हाँ कही थी। हालांकि इशिका ने उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, पर फिर भी चरित के कहते ही सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक लड़का जल्दी से बोला, चरित तुमने अभी अभी क्या कहा? इसी के साथ चरित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इशिका की तरफ देखते हुए धीरे से सॉली कहा। हालांकि इशिका अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब उसके पास आकर सवाल जवाब करने लगता। लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया था कि इशिका पीछे भी नहीं हट सकती थी। इशिका कुछ कहती उससे पहले एलिस जल्दी से बोल पड़ी, चरित अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या इशिका डॉक्टर मर्चेंट है? तुम हम सबके साथ मजाक कर रहे हो ना? चरित की बातों को सबने मजाक में लिया और सब एक साथ हंस पड़े। एक लड़की ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इशिका एक अंडर ग्रेजुएट है और उसकी उम्र भी इतनी कम है, तो वो डॉक्टर मर्चेंट कैसे हो सकती है? ऊपर से 2 साल पहले डॉक्टर मर्चेंट ने न्यू एनर्जी के फील्ड में जो अचीवमेंट हासिल किया था, वो एक 21 साल की लड़की कभी नहीं कर पाती। फिर उन्होंने इशिका की तरफ देखा, जो शांति से वहां बैठी हुई थी। एलिस ने उससे कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी? चरित यहाँ इतना बड़ा दावा कर रहा है कि तुम डॉक्टर मर्चेंट हो और तुम यहाँ शांति से कैसे बैठ सकती हो? चरित ने भी इशिका की तरफ देखकर कहा, प्लीज कुछ तो बोलो। इशिका को शांत देखकर उसे एहसास हुआ कि अभी वो अपनी पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, और गलती से उसने सबके सामने इशिका की सच्चाई बता दी थी। ऊपर से अब उसके पास कवर करने को कुछ था भी नहीं। अचानक इशिका ने उन सबकी तरफ देखा और सख्ती से कहा, ये सच बोल रहा है। चरित के चेहरे पर स्माइल थी, पर साथ ही वो हैरान भी था। उसने इशिका से कहा, चलो तुमने माना तो सही, देखा जाए तो इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। उल्टा तुम्हारी जगह कोई और होता तो सबको चिल्लाकर बताता कि मैं डॉक्टर मर्चेंट हूँ। हर कोई हैरानी से इशिका की तरफ देखने लगा। अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। तभी एलिस को भी सब समझ आ गया कि आखिर चरित इशिका से इतनी बात क्यों कर रहा था। एलिस ने चरित से कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी बॉस है और इसीलिए तुम इससे इतनी बातें कर रहे थे और इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? हाँ, सच कहा, मुझे भी कुछ देर पहले ही डॉक्टर मर्चेंट के बारे में पता चला है, चरित ने खुश होकर बताया। और तुम बेवकूफ इसकी बातों में आ गए हो, ये तुम्हें बुद्धू बना रही है, ये कोई डॉक्टर मर्चेंट नहीं है, एलिस ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो हल्के गुस्से में बोली, थोड़ा तो दिमाग लगाते, डॉक्टर मर्चेंट की जो अचीवमेंट है वो इशिका जितनी कम उम्र में कभी भी हासिल नहीं की जा सकती है। इसने तुम्हें कहा और तुम मान भी गए, तुम बहुत भोले हो चरित। एलिस की तरह कोई भी इशिका की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको यही लगता था कि इशिका डॉक्टर मर्चेंट कभी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल उसकी उम्र पर था। चरित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने इशिका का नंबर सेव किया, तब पता चला कि वो डॉक्टर मर्चेंट के नंबर है, जो पहले से ही हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड थे। दिशांक सर के मना करने की वजह से हम में से किसी ने डॉक्टर मर्चेंट के नंबर सेव नहीं किए थे। कहा ना, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। चलो आयशा से पूछते हैं, वैसे भी आयशा डॉक्टर मर्चेंट से जरूर मिली होगी और इसकी तो उनसे बात भी होती ही रहती है। एलिस ने पूरा मामला आयशा पर डाल दिया था। आयशा पूरा सच जानती थी, लेकिन वो सबके सामने इशिका का सपोर्ट कैसे कर सकती थी? उसने कुछ पल रुक कर कहा, मैंने बीच में ही क्विट कर दिया था, सोचा कि फैमिली बिजनेस पर ध्यान देती हूँ। इसका मतलब तुम डॉक्टर मर्चेंट से नहीं मिली हो? एलिस ने हैरानी से पूछा, जिस पर आयशा ने नामे सिर हिला दिया। नक्श भी उस मैटर को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने कहा, ठीक है, हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? आज प्रोफेसर मिलर का बर्थडे है तो उसे सेलिब्रेट करते हैं। नक्श के कहते ही सबने टॉपिक बदल दिया था, पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि नक्श अभी भी इशिका को पसंद करता है, शायद इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी प्रोफेसर मिलर भी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां आते ही सफाई देते हुए कहा, सॉरी स्टूडेंट्स, सुबह मेरी क्लास होने की वजह से मुझे आने में देर हो गई, आई होप कि मैंने कुछ मिस ना किया हो। एलिस जल्दी से खड़ी हुई और बोली, कुछ नहीं सर, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, यहाँ बहुत ड्रामा क्रिएट हो गया था और हमारी डियर इशिका सिंघानिया ये क्लेम कर रही है कि वो डॉक्टर मर्चेंट है। नक्श के मना करने के बावजूद एलिस ने उस टॉपिक को फिर से उठा दिया था। उस टॉपिक के फिर से उठने का मतलब था कि इशिका की सच्चाई सबके सामने आना। आयशा नहीं चाहती थी कि पार्टी की सारी लाइमलाइट इशिका के पास चली जाए। वो जल्दी से बोली, एलिस आज प्रोफेसर का दिन है, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ना कि इधर उधर की बातें करके उनका मूड अपसेट करें। केक अभी आता ही होगा, तब तक ड्रिंक एंजॉय करें। आयशा के कहते ही सबने अपने अपने ग्लास उठा लिए थे। वो काफी खुश नजर आ रहे थे सिवाय चरित के, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब एक एक करके आगे आने लगे और प्रोफेसर मिलर को बर्थडे विश करने लगे। फिर वो हेड ऑफिस चेयर पर बैठे और इशिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, तो इशिका सिंघानिया को इतना टाइम मिल गया कि वो मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आई है, चलो आओ मेरे पास।
पास बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। इशिका को इतनी इंपॉर्टेंस मिलते देख वो सब हैरान रह गए। इशिका आगे गई और प्रोफेसर को बर्थडे विश किया। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, मैं इतने दिनों से बात करने के लिए मैसेज कर रहा हूँ पर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं सच में बिजी थी सर, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। इशिका पिछले दिनों वाकई काफी बिजी थी। उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा था, कभी आयशा की वजह से तो कभी आशीष के मरने के कारण। ऊपर से वसुधा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर थी तो वो टाइम नहीं निकाल पाई। वहीं प्रोफेसर और इशिका को इतना क्लोज देखकर सबको सलन महसूस हो रही थी। इन सबके बीच चरित ने हिम्मत की और खड़े होकर प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर मिलर, कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है, प्लीज आप इन सबको बताइए ना कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। प्रोफेसर मिलर मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, आज मैं आप सबको ऑफिशियली इशिका से इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाँ, यही डॉक्टर मर्चेंट है जो आपके कॉलेज की न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट की स्पेशल फैकल्टी है। हाँ, इसने कभी आप लोगों की क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि तब वो आपके बीच एक स्टूडेंट के तौर पर थी। चरित की बात पर भले ही उन सबको यकीन ना हो लेकिन प्रोफेसर इतनी बड़ी पोस्ट पर थे और वो सब उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे, उनके झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुरंत ही सबको एहसास हुआ और वो एक एक करके इशिका से माफी मांगने लगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, इशिका ने भी इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया।
एलिस को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, वो चरित को पसंद करती थी लेकिन उसकी जलन के चक्कर में अब उसने उसे पूरी तरह खो दिया था। तो वहीं इशिका को पूरी लाइमलाइट मिलते देखकर आयशा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आयशा खड़ी हुई और प्रोफेसर की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, प्रोफेसर मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, एक्चुअली मैंने और नक्श ने शादी कर ली है। आयशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई और सब उसे विश करने लगे। सब उसकी रिसेप्शन पार्टी अटेंड करना चाहते थे और आयशा ने भी उन्हें वहां बुलाने का वादा किया। मौका देखकर एलिस ने तेज आवाज में कहा, मुबारक हो आयशा, तुमने सच में अपनी पर्सनल लाइफ में काफी तरक्की की है। भले ही इशिका ने अपना कैरियर सक्सेसफुल कर लिया हो लेकिन एक अच्छा पति मिलना भी किस्मत होती है। अरे ऐसे मत कहो, यहाँ इशिका ही है जिसने सबसे पहले शादी की थी, आयशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। आयशा के कहते ही एक लड़की इशिका से बोली, डॉक्टर मर्चेंट क्या सच में तुमने शादी कर ली? जरूर वो कोई अमीर बिजनेसमैन ही होगा, तुम अपने हस्बैंड को यहाँ क्यों नहीं लेकर आई, हम भी उनसे मिल लेते। अगली बार मैं तुम सबको उनसे जरूर मिलवाऊंगी, इशिका ने शांति से कहा। तभी आयशा झट से बोली, अगली बार इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे आज यहाँ पार्टी में बुलाया है। इशिका हैरान रह गई तो वहीं आयशा की सारी बातें अभिमन्यु ने सुन ली थी जो उस वक्त उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। तभी आयशा ने आगे आकर अपने और निक के बीच की बातचीत को दिखाया जिसे देखकर इशिका हैरान रह गई। वो एक ऐसे आदमी से बात कर रही थी जिसे इशिका जानती तक नहीं थी। बात करते हुए आयशा ने उसे इस कमरे की लोकेशन दे दी थी। वहीं अभिमन्यु कमरे के बाहर ही खड़ा था तो पृथ्वी ने उससे पूछा, सर आप अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? अचानक उनका ध्यान उस तरफ से आ रहे एक आदमी की तरफ गया, वो निक था। जल्दबाजी में आने की वजह से निक ने आज भी अपने कपड़े नहीं बदले थे और वो कंस्ट्रक्शन की मिट्टी से भरा हुआ था, हालांकि उसने अपना चेहरा अच्छे से साफ किया था। निक की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से उसे खुद को अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा दिखने की जरूरत नहीं थी। वो अमीर था, सक्सेसफुल था, उसका चेहरा उसके देश में सब लोग जानते थे और सब उसकी इज्जत करते थे, तो वो कपड़ों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता था। निक उनके पास आया और अभिमन्यु से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या स्पेशल VIP रूम इधर है? हाँ वो यही है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम रियूनियन पार्टी के लिए आए हो? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। नहीं, मैं बस यहाँ इशिका से मिलने के लिए आया हूँ, निक ने मुस्कुरा के जवाब दिया। उसके बाद वो उस कमरे के अंदर चला गया। वहीं निक का जवाब सुनकर पृथ्वी ने हैरानी से पूछा, मिस सिंघानिया का इसके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? अभिमन्यु ने गुस्से में गहरी सांस लेकर कहा, मुझे कैसे पता होगा जो तुम मुझे पूछ रहे हो? तभी कमरे का दरवाजा खुला और निक अंदर गया। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही इशिका का ध्यान दरवाजे की तरफ गया तो उसे लगा कि उसने अभिमन्यु को देखा है। वो मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहां बाहर अभिमन्यु खड़ा है, वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो घर पर सो रहा था। इशिका ने इसे अपनी फलतफहमी समझकर जाने दिया। तभी एलिस ने निक की तरफ इशारा करके पूछा, इशिका क्या तुम्हारा पति ये है? क्या पति? इशिका धीरे से कहा और फिर निक की तरफ देखा। पिछली बार जब वो उसे मिली थी तब निक का चेहरा साफ नहीं था तो वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, पर हाँ आज वो उन गंदे कपड़ों में भी काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी फेशियल फीचर किसी ब्रिटिश आदमी की तरह लगती थी। इशिका कुछ कहती उससे पहले एलिस ने कहा, क्या बात है, तुमने एक मजदूर से शादी की है? इशिका सिर्फ ये सोचकर कि ये दिखने में हैंडसम है? आयशा यही चाहती थी कि इशिका की सबके सामने इंसल्ट हो। उसने एलिस को झूठा डांटते हुए कहा, एलिस हमें हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुम लोग जगह दो इशिका के पति को, ये बेचारा यहाँ खड़ा रहेगा क्या? आयशा के कहते ही इशिका के बगल में जो लड़का बैठा था वो तुरंत खड़ा हो गया और उसने निक को जगह दी। निक इशिका के पास जाकर बोला, मिस सिंघानिया आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ, इशिका ने धीरे से कहा। निक उसे अपना इंट्रोडक्शन देता उससे पहले एलिस ने हंसते हुए कहा,
डोंट टेल मी कि तुम अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही हो, सिर्फ इस वजह से ना क्योंकि वो एक मजदूर है। लेकिन मैं इनका पति नहीं हूँ, निक ने तुरंत कहा। अगर तुम इसके पति नहीं हो तो कल फिर सिंघानिया मेंशन में क्यों आए थे, आयशा ने पूछा। मैं इशिका को छाता देने गया था, निक ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। देखा, कल बारिश हो रही थी और इसे इशिका की इतनी परवाह है कि वो उसके लिए छाता तक लेकर गया था। पर ये मैडम इस वजह से इसे नहीं पहचान रही क्योंकि ये करीब आदमी है। कमॉन इशिका, कोई यहाँ तुम पर सवाल नहीं उठा रहा है। तुम डॉक्टर मर्चेंट हो तो जरूरी नहीं कि तुम भी बिजनेस टाइकून से ही शादी करो। ये इंसान भी मुझे दिल का अच्छा लग रहा है, आयशा ने बढ़ा चढ़ा कर कहा। उन सबको आयशा की बातें सच लग रही थी। इस बार तो चरित भी कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसने कंपनी में अफवाह सुनी थी कि डॉक्टर मर्चेंट को कंपनी का आईपीओ हासिल करने के लिए शादी भी करनी पड़ सकती थी। हर किसी को ये इशिका का ड्रामा लग रहा था जो अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही थी, और उसका साथ देते हुए निक भी इस बात से इनकार कर रहा था कि वो उसका पति है। एलिस ने इशिका की तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम मान लेने कि ये तुम्हारा पति नहीं है, तो फिर सबूत दिखाओ कि तुम्हारा पति कौन है। अपना मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें दिखाना होगा। जैसे ही एलिस की बात खत्म हुई, कमरे का दरवाजा खुला और अभिमन्यु अंदर आ गया था। अंदर जो भी ड्रामा चल रहा था उसने सब कुछ सुन लिया था और इसी वजह से उसने अंदर आने का फैसला लिया। अंदर आते हुए अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, मेरे होते हुए कोई और मिस सिंघानिया का पति बनकर कैसे आ सकता है, बस बहुत हो गया। अब इन्हें बताना ही होगा मिस सिंघानिया का हस्बैंड कोई मजदूर नहीं बल्कि अभिमन्यु राजवंश है। हालात देखते हुए अभिमन्यु ने सबके सामने सच रिवील करने का फैसला किया।